भागवतम 47 अध्याय। एक कोने में खड़े बैठे हैं और श्रीमती राधिका जी दिव्य उन्माद में तरह तरह के जल्प प्रजल्प चित्र जल्प कर रही हैं। बुद्धा जी उनके बातों को सुन करके पद पद पर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, नए नए भाव दर्शन करते हैं, लक्ष्य करते हैं। जबकि श्रीमती राधिका जी ने कहा, एक बार हमें अपने अधर रस का पान कराकर और हमें सदा के लिए त्याग कर दिया, जैसे तुम हो, तुम फूलों पर जाते हो छोड़ देते हो, ऐसे वे तुम्हारे ही जैसे हैं, वो निष्ठुर निर्दय हैं। यदि कहो कथम तत्पाद पद्मम नु पद्मा, पद्मा जी जो परम पतिव्रता रमणी हैं, वो कैसे उनकी परिचर्या करती हैं? तो गोपी कह रही है, श्रीमती राधिका जी कह रही हैं, तू नहीं जानता दूत को कह रहे हैं भ्रमर को, तू नहीं जानता। अरे वो तो इसीलिए पद्मा को वशीभूत कर रखा है। यदि एक पद्मा जी हमारे पक्ष में रहे, वो भोरी भारी, तो जगत के सभी लोग विश्वास करेंगे, जो हो कृष्ण बहुत अच्छे हैं। इसलिए छल बल कौशल से उन्होंने पद्मा जी को अपने पक्ष में रखा है, इसलिए कि कोई उन पर अंगुली न उठा सके, कोई उनको दोष न दिखा सके। इसलिए तो वो तो भोरी भारी थोड़ी है। यदि भ्रमर कहता है, अब जरूर भोरी भारी है, वो तो अभी नहीं आई है उनके पास में, हम तो बचपन से उनको जानती हैं, इसलिए कृष्ण हमको ठग नहीं सकते, किंतु भोरी भारी पद्मा को ठग लिया है। कैसे? ही उत्तम श्लोक जल पाई, क्योंकि लक्ष्मी जी उनको उत्तम श्लोक जानती हैं। उत्तम श्लोक कहते हैं किसको? जो असहाय है, जो सब प्रकार से दीनहीन है, ऐसे लोगों पर उदारता पूर्वक कृपा की जाए तो उसको कहते हैं उत्तम श्लोक। दीनहीनों पर जो दया करे, अपने आश्रितों पर दया करे, ऐसी जिनकी गाथा है, जिसकी प्रतिष्ठा है, शास्त्रों में महापुरुषों के द्वारा ऐसे महापुरुषों की चारों तरफ में प्रशंसा की जाती है, तो लक्ष्मी जी उनको तो इस रूप में जानती हैं, क्योंकि अभी नई है, नवेली है, किंतु हम उनको तो जानती हैं। हमको क्या किया? हमारा धर्म कर्म सभी नष्ट कर दिए, हमें कहीं का नहीं रखा, हमने सब कुछ उनके उनको अर्पण कर दिया था, अपना कुछ रखा नहीं, देह दही। इसलिए हम जानती हैं ये कैसे है। वो बेचारी अभी नहीं है, उसको कुछ पता नहीं, इसलिए उत्तम श्लोक तो उनको कहते हैं, वो अपने आप कहते हैं, किंतु उत्तम श्लोक के भीतर में क्या छिपा है, निष्ठुरता, ये उनको पता नहीं है, किंतु हमको पता है। तो जहां पर जहाँ पर इष्ट के प्रति 60 उनकी 60ता का वर्णन होता है, निष्ठुरता और निर्दयता का वर्णन करती है, उनकी चपलता, निष्ठुरता कैसा, एक बार पान करा में छोड़ दिया, इस पर जीवन भर दूसरी हम लोग की सूद बुझने की, ये निष्ठुरता। और भवाद्रिक, तुम जैसे चपल हो ऐसे वो चपल है, जैसे भ्रमर एक फूल को छोड़ करके, एक फूल को सुमन को छोड़ करके सदा के लिए छोड़ देता है, इस तरह से ये चपल है, इनकी प्रति का कोई भरोसा नहीं। और लक्ष्मी आर्य, लक्ष्मी जी बड़ी सरल सीधी हैं, इसलिए वो चतुर नहीं, हम चतुर हैं इत्यादि के द्वारा कृष्ण को अकृतज्ञ बनाना। और प्रेम शून्य, कृष्ण प्रेम शून्य है तुम्हारे जैसे, निष्ठुर चपल ये सब तुम्हारे समानी है, ऐसे भाव का नाम है। पर भीतर में गुढ़ मान अप्रीति भी, और ऊपर से ऐसे कहना, ये है परिजल। अब चल रहे हैं तीसरे श्लोक में, अब चल रहा है बीजल्प। जल्प का ठीक विपरीत ये बीजल्प। किमह भौषणंग्रे गायसित्वं जदुनाम अधिपति अग्रहाणम अग्रतो नह पुराणम विजय सखीनं गीयतां तत्प्रसंगम छपित कुजरो जास्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्ट। किमह, उन्होंने भाव नेत्र से देखा कि हमने जो उसको डांटा, श्रीमती राधिका जी देख रही, अकृष्ण को निष्ठुर इत्यादि बतलाया, तो इसके हृदय में चोट लगी होगी, इसलिए यहां से वो चला गया होगा। उस समय थोड़ा सा उड़ करके इधर उधर गया, तो देखा जैसे ये चला गया, तो सोचा अच्छा हुआ चला गया। थोड़ी देर के बाद में देखती हैं कि फिर आ गया, और वही गुनगुन कर रहा है कि क्या हो रहा है, ये बदमाश है, नहीं हुआ तो बंद कर दो ऊपर दरवाजा। वो गुनगुन कर रहा है, नहीं देखो तो इसको इतना फटकारा, और कहा कि तुम चले जाओ, तो ये भी जदुपति के ही समान, कृष्ण के ही समान, ये भी वैसा ही है, जैसे पहले हम कृष्ण को हटा देती थी, दूर कर देती, फिर आ जाता था, ऐसे इसका दुख भी ऐसा ही है। हम नहीं चाहते हैं हमारे सामने उनके गुणगान करें, और वो उन्हीं का गुणगान कर रहा है। यह तुम फिर इस वृंदावन में आ गया, यहां पर आ गया, और हे षडंगे, षडंगे कहने का मतलब है छौ जिसके पैर हैं, जिसके चार दो पैर हैं वो मनुष्य कहलाता है, उसको कुछ बुद्धि शुद्धि रहती है, और चतुष्पद चार पैर वालों को बुद्धि नहीं रहती, उनको जानवर कहते हैं, और तू छह पैरों वाला, तो तेरी बुद्धि कहाँ रहेगी, जानवर से गया बेटा, तुमको ज्ञान नहीं है, तुमको कैसे आना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए, किस वेशभूषा में होना चाहिए, कहां पर कौन सी बात करनी चाहिए, तुमको कहा ना ये सब गान मत करो। तो वो कह रहा है, मानो भन भन करता हुआ, जैसे स्वामिनी जी हमारे जाति का ये स्वभाव ही है, मैं गुनगुन गुंजार करता रहता हूं, इसलिए स्वभाव उससे गुंजार करना है, मैं गाऊं नहीं तो मर जाऊंगा, बिना गाए हम रह नहीं सकते जब तक जीवित रहेंगे, तो फिर तुम्हारा स्वभाव है तो तुमको गाने के लिए मना थोड़े करती हूं, किंतु गीयतांग तत्प्रसंगम उसके संबंध में मत बोलो कुछ, इतने तरह की गाने गीत हैं, एक ही तरह की गीत है, बहुत तरह के गान हैं, उनके विषय चर्चा को छोड़ करके जदु के जो पति हैं अभी, जो हमें निस्व कर गए, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, धर्म कर्म सब कुछ नष्ट कर दिया, कहीं कहीं नहीं रखा, फिर उन्हीं की बात क्यों करता है दूसरी बात को? और दूसरी बात तुमको वो भी लिए मना नहीं करती, हमारे सामने उनकी बात मत करो। क्या ये वृंदावन छोड़ करके, इस हमारे जगह को छोड़ करके विश्व में कोई जगह नहीं है ये तुम अपना गान करो, जाओ दूसरों को सुनाओ, हमारे यहाँ किंतु उनका गुणगान मत करो। और यदि गाना ही है तो कृष्ण संबंध छोड़ करके और बहुत से गान हैं, उन गानों को करो। दूसरी बात, तू जानता है अधिपति जदु नाम अधिपति तुम गायसी, तुम जदुपति जदु के अधिपति हो गए हैं, विराट ऐश्वर्य विराट श्री, और हमको क्या किया, श्री से भ्रष्ट कर दिया। आज एक मुट्ठी चना नहीं जो तुमको हम दे सकें, और की तो बात क्या, कुछ भी देने लायक नहीं रखा हमको, जो कुछ था हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया इन्होंने, वो मधुपति। और हम कहाँ हैं आज, कंगालिनी वन में बैठी हुई है पेड़ के नीचे, न घर है न द्वार है, घर द्वार रहते हुए सब कुछ हम लोगों का कुछ नहीं, सबसे वंचित कर दिया उन्होंने। जानता है तू किसके कारण ये हुआ हमारी ये दुर्दशा? बोलता क्यों, उत्तर क्यों नहीं देता? कहता ऐसे तो मैं बतलाऊं, हमारा सर्वस्व उन्होंने ले लिया, हमारा पति के प्रति भाव था, संसार में भाव था, सब लोग मुझे आदर करते थे, आज उनके कारण हमारा सब कुछ गया, और उन्हीं की तुम बार बार गान कर रहे हो उनकी प्रशंसा। न पुराणम, हम कैसी हैं, वो तो मधुपति के राजा हुए और हमें कंगालनी बना दिया, अध्याणम अग्रता न पुराण, पुरानी बातों को छोड़ो, ये तो तुम कल के हो, हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं। पुराणम माने उनकी प्रशंसा कहना, ये भी पुराणम। पुराण क्या है, इतिहास है ना, किसका इतिहास, भगवान और भक्तों का। तो ये पुराणम अथवा प्रतिष्ठा, उनकी प्रतिष्ठा हमारे सामने प्रशंसा मत कर, कहां कंगाली बना गए हमें, विजय सख सखी नाम मैं, अच्छा तो देखो हम तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, आप बार बार तू मानता नहीं है, तुम्हारी एक सहायता कर सकती है, हम इस स्थान को बतला देंगे जहां से तुम्हारी आकांक्षा आशा पूर्ण होगी, तुम सीधे मथुरा में चले जाओ, विजय सख सखी नाम दियताम तत्प्रसंग, विजय सख, विजय मैंने अर्जुन, अर्जुन का नाम एक विजय है, सख अर्जुन के जो सखा उनकी सखियां विजय सख कृष्ण हुए, और उनकी सखियां कौन है, मथुरापुर वासिनी युवतियां किशोरियां, विजय सख सखी रंग उन्हीं के सामने जाकर के गाना, तुमको प्रचुर इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। अथवा पुराणम मने, पुराणम मने प्रमाण यशी, तुम उनको ये प्रणाम प्रमाण करना चाहता है कि ये सरल सीधे और तुम्हारे प्रति प्रीति रखने वाले हो है वो, इसको प्रमाण करना चाहते हैं, कहते हैं तुम, हम इस बात को कभी भी स्वीकार किसी भी जन्म जन्मांतर में नहीं करेंगे। हे षडंग्रे पशु तुम है,
षटपद स अर्ध पशु, वो भी आधा पशु, पूरा पशु नहीं। अतः तुमको बुद्धि नहीं, कैसे किसके पास में जाया जाता है ये भी बात नहीं, और तुम पुरानी बातों को भी नहीं जानता उनका व्यवहार कैसा है, और कहां पर कब कैसी कथा बोलनी चाहिए ये भी तुम गोपियों की सभा में तुमको कैसे, जिनको विरह में जल रही हैं, तड़प रही हैं, उनकी सांत्वना देने के लिए ठीक उसके विपरीत बातें सुना रहे हो, किंतु तो पशु तुल्यभ्यम वयं न कुप्यम, किंतु तुम पशुओं की भांति पशु जैसे क्रोधित हो जाता है, तुम्हारी बात करके हम क्रोधित नहीं हो रही हैं, क्योंकि हम पशु नहीं। अरे बंद कर दो, एकदम जाकर दरवाजा बंद कर दो पूरा, तो हम लोग बिगड़ेंगे नहीं, किंतु तुम गान के देव द्वारा ही अपना जीवन प्रतिपालन करता है। जैसे कुछ गायक होते हैं पैसे लेकर के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कुछ भागवत को भी कह करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, भागवत कहेंगे उनको पैसा मिल जाएगा जीवन निर्वाह करते हैं, किंतु उचित तो नहीं है। तो वैसे गान की गा करके तुम जीवित रहने वाले हो, तुमको किंतु स्थान दे करके करना चाहिए गान, कैसा किस स्थान में गान किया जाता है। देखो विजय सख एक नया चीज बतला रहे हैं, काम युद्धे विशिष्टो जयो जस्य विगत जयो वाजस्य च असौ सखा। काम के युद्ध में जो कभी जीत जाते हैं या विजित हो जाते हैं, चयति विजय सख, विजय के सखा है, कौन सा विजय, कामलोलुपता में जो जय कर लेते हैं सबको, उस विजय वही विजय के ये सखा है, सब समय इनको विजय होती रहती है। अथवा काम के बाद जयति वा जाभिर विजय थे, जिसके द्वारा जीत लिए जाते हैं या खुद जिसको जीत लेते हैं, वो कौन है, वही कृष्ण है। दासामेव अग्रह अग्रतः तत्प्रसंगा गीयताम, जब मथुरा में अभी जिसके साथ में वो, उसमें हम लोग जानते हैं कि बिना स्त्रियों के वो एक मिनट नहीं रह सकते, जरूर उनको चाहिए, ब्रज में थे वैसे ही, मथुरा में भी गए वही, द्वारका में 16108 रानियों के साथ में पीछे से विवाह भी करेंगे, ले गोपियां हम जानती हैं उसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए विजय शब्द का ये अर्थ निकाला। श्लेषेन पूर्व सुबल सखा सीत, श्लेष के द्वारा ये विचार करके करें, पहले ये विजय माने सुबल का सखा था, सुबल माने कृष्ण के, सुबल सिदाम मधुमंगल इत्यादि, अर्जुन लवंग इनका सुबल का सखा था, और अब वो अर्जुन का सखा हो गया। अर्जुन का संबंध है द्वारका वाले कृष्ण या मथुरा वाले कृष्ण से, इसलिए संप्रति विजय अर्जुनस्य सखा भव, वो अर्जुन का सखा हो गया है, ब्रज का भाव छोड़ दिया, भावी बात है कैसे, ये तो पीछे की बात होगी, अभी तो अर्जुन का सखा पीछे से बनेंगे, अभी तो ये ब्रज की लीला है, अभी मथुरा में गए। पूर्णमासी ने कह दिया जैसे ऐसे ऐसे होगा उनका जीवन चरित्र, इसलिए हम सुन करके कह रहे हैं, इसलिए इसमें संदेह मत करो। विष्णुनांगीयतां तत्प्रसंग छपित कुजरु जास्ते कल्पयन्ति इष्टमेष्टा, जिनकी जिनका रोग दूर कर दिया है अपने संग से, लाखों ऐसी हैं मथुरापुरी में, जब जाएगा तो उनकी खूब प्रशंसा करना, और तुम्हें जो कुछ इच्छा होगी वो तुमको दे देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है देने का। कृष्ण के प्रति कटाक्ष कर रही है। अत्र उत्तरार्धे, उत्तरार्ध में पशु या मान गर्भ है, भीतर में मान, ऊपर से असूया। असूया कहां? मधुपति अग्रहणम, हमको घर बार छोड़ा दिया, ये असूया। और विजय शक्ति के द्वारा उपहास कर रही है, जब कहा ये विजय का सखा, पहले सुबल का सखा था, अब इसका सखा बन गया, स्वभाव ही उसका छूट गया और अत्यंत कामी है, इसलिए खपित कुजरुजास्ते कल्पयंती इष्टमिष्टा। इसके द्वारा कृष्ण के प्रति असूया, मान, गर्व, निष्ठुरता इत्यादि का वर्णन कर रही है। उद्धव जी ने देखा जी आज तक प्रभु के संबंध में कोई भी लांछन नहीं लगा सका और ये स्पष्ट रूप में ऐसा कह रही है। फिर वो गुनगुनाने लगा, अजी ऐसी बात है तो पद्मा फिर क्यों, लक्ष्मी क्यों उनकी सेवा करती है? इसके लिए वो फिर कर रहे हैं, द्विभूच रसायन स्त्रिय का तद्दुरापा कपट रुचि रहास भू जिभ महर्ष जासु चरण रज उपास्ते जस्य भूतिर भयंका अपि चक्रवर्ण पक्के उत्तम श्लोक शब्द। भ्रमर कुछ तिल मिलाया और झंकार करता हुआ इधर उधर घूमने लगा, अरे तू क्या कहता है, क्या कहता है? फिर सखी से कहती है, देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है जैसे मथुरापुरी में सब स्त्रियां तो बड़ी पतिव्रता है, आज तक से सुना नहीं गया कि मथुरा में कोई अपतिव्रता हो, किंतु ये तो सीधे लांछन लगा रही है। स्वामी जी ऐसा कर क्यों कह रही है, मथुरा की जितनी है स्त्रियां सब पतिव्रता है, अपने पतियों की सेवा करती है और आप उनके लिए ऐसा कह रही है, वो तो उचित नहीं है। तब ये कह रही है, हम नहीं जानते हैं कि मथुरा की स्त्रियां पतिव्रता, हम जानती हैं, जानती हैं ये पतिव्रता है, अरे उनसे तो अधिक पतिव्रता लक्ष्मी जी हैं, जब लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं तो और की तो बात क्या कहें, उसी के लिए कह रही है। दिभूच रसायन स्त्री कत्त दुरापा, तू बतला सकती हो, बता सकते हो, दीवी दी माने स्वर्ग लोक में, भूवि भूलोक में, भूरुआ रसातल तल तलातल पाशाता पाताल और ऊपर में बैकुंठ तक, ऐसी कोई स्त्री है जो तद्दुरापा उनके लिए प्राप्ति के लिए दुर्लभ हो, ऐसी कोई विश्व में नारी नहीं है, बैकुंठ से लेकर के इस जगत में। हम तो एक तुच्छ गोपी हैं, ग्वाले की स्त्रियां हैं, हमारे लिए तो छोड़ दो। ओ कृष्ण प्रियसी शिरोमणि, हे कृष्ण की प्रियाओं में सबसे शिरोमणि आप, देखो मैं वहां से संदेश लेकर के आया, तत्र स्थित सौ कृष्ण तुम्हारे विरह में बड़े व्याकुल हो रहे हैं, मथुरापुरी में सुख से नहीं है, बड़े दुख से है, वहां रह करके दिन रात तुम्हारा ध्यान करते हैं, इसलिए तुमसे हमारी प्रार्थना है कि आप उन पर प्रसन्न हो जाएं और मिलने का अवकाश दें। आप उन्हें इस तरह से निष्ठुर और निर्दय मत समझिए, यदि ऐसा कह रहा है भ्रमर तो उसके उत्तर में ये कहेंगे तंचेत प्रसिद्धसि तत्रैव तस्य निस्तार। यदि आप प्रसन्न हो जाएंगे उनके ऊपर में तो कृष्ण का उद्धार हो जाएगा और वो दुख से मरने से बच जाएंगे, इसलिए आप लोग इतना निष्ठुर और निर्दय मत बनिए। तब वो असूया के साथ में, ईर्ष्या के साथ में कहने लग गई श्रीमती राधिका जी, कृष्ण का बिना स्त्रियों के एक मिनट का समय अतिवाहित नहीं होता, उनको चाहिए। बचपन से अभी तक हम लोगों ने देखा, हम अच्छी तरह से इस विषय को जानती हैं। इसलिए यदि मथुरायन स्त्री उन्होंने मिलंती, तब फिर यदि मथुरा में वो है और यदि वहां पर स्त्रियां नहीं रहती, नहीं मिलती, तब तो हमको ध्यान हमारा करते और हमको प्यार करते, किंतु वहां पर तो कोटि कोटि स्त्रियां हैं, रमणियां हैं सब, उनमें उनका दिन अच्छी तरह से चला जाता होगा, हमारी क्या जरूरत है। तत्र ने तुम तादृश, क्या तुम हमको लेने के लिए आया? उन्होंने कहा जे ले आओ, क्या हमारी जरूरत है, वहां पर तो कोटि कोटि किशोरियां उनके लिए सुलभ है। अथवा तुम सुलहनामा कराने के लिए आए हो, किस लिए, उनको क्या गरज है, जो चाहते हैं वहां पर मिला हुआ है आसानी से। न चो गोप जाति तुम, गोप जाति, भ्रमर का राज नहीं, वो तो गोपी नहीं है, वो तो जादवी है, क्षत्रियाणी है, फिर उनका कैसे मेल खाएगा, इसलिए वो तुम ही पर अधिक प्रीति है। ओ ऐसा मत कहो, तब वो कह रही है हमारे बिना उनका खूब काम चलेगा। जतो देवी भूविति, इसके द्वारा समझो पृथ्वी लोक में, ब्रह्म लोक में, पाताल लोक में, वैकुंठ तक लोक में कौन ऐसा है जो स्त्री उनको नहीं चाहती हो, उनके लिए कोई भी ऐसा नहीं है जो अलभ्य हो। यदि स्वर्ग कच्छ, यदि वह स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग की स्त्रियां उनको घेर लेती हैं। जब यमंती को गरुड़ पर लेकर के बैठ करके गए, जब सत्यभामा को गरुड़ पर बैठा लिया, चले गए स्वर्ग लोक में, पारिजात का वृक्ष उखाड़े, उस समय में देवता लोग तो इंद्र का पक्ष के लड़ने के लिए आए और उनकी पत्नियां सभी, लक्ष्मी इत्यादि सभी कृष्ण के तरफ में देखने लग गई। उन्होंने अपना सौभाग्य माना कृष्ण को देख करके। यदि रसातल में कभी चले जाएं तो नागपत्नी इत्यादि, नागपत्नियों से कहां से प्रेम हुआ। रसातल में कभी गए और वहां पर इनको देखा नागपत्नियों ने, कभी से अपने चित्त को इन्होंने अर्पण कर दिया। नागपत्नियां बड़ी सुंदरी होती हैं। अपने अपने पतियों को छोड़ करके तम आप अच्छा सु कृष्ण के निकट गए। नाग की पत्नियां थी, कृष्ण को ही अपना प्रियतम मान रही हैं, अपने पतियों को चाहे मर जाए, ये भगवत विरोधी व्यक्ति हमारा पति है, हम ऐसे पति को नहीं, ये मर जाए अच्छा है। यदि कृष्ण का अनुकूल रहता, इतने में कुछ अनुकूल हो गया तो कृष्ण ने प्रार्थना की अब ये इसको मत मारिए, अब अनुकूल हो गया है, अनुकूल होने से अब आपकी हम और अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे। इसलिए रसातल में, पाताल में, स्वर्ग लोक में जहां भी वो जाए उनको इस चीज की कमी नहीं। मथुरांगनानं का वार्ता इति भाव, मथुरा की अंगनाओं की तो बात ही क्या। कृष्ण जब आए पहले दिन और नगर में घूम रहे हैं, शाम को हाथों में पुष्प लेकर, खील लेकर, जय जयकार करती हुई उनके तरफ में ये सब फेंक रही है पुष्प। उस समय कोई मथुरा की नागरी सुना जो कृष्ण आ रहे हैं और सखियां उसकी उसका श्रृंगार कर रही थी, कहा जो छोड़ो जल्दी अब, कहा जो बस एक आंख में ये लगाना बाकी रह गया है, बस ये लगा दो। अरे जबकि चले जाएंगे तब छोड़ छोड़ जल्दी, और वो दे रहे ऐसे दूसरी कोई श्रृंगार कर रही है, और सुना जी कृष्ण आ रहे हैं, हो हल्ला मचा हुआ है सड़क पर जाने के लिए, ऊपर से अटारी से देखने के लिए एकदम बेताब हो गई। इसलिए कह रही है मथुरा की पत्नियों की तो बात ही क्या, नच तत्त अंगना प्राप्त तस्य किंचित पनादिकम अपेक्षित। उन स्त्रियों को जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जब ये नरकासुर के यहां पर पहुंचे, उनका वध किया नरकासुर का, 16108 बड़ी सुंदरी विवाहिता भी, नौ विवाहिता स्त्रियां उसके यहां बंद थी। कृष्ण ने जे कहो तुम्हारे घर में पहुंचा दूं, कहिए अब पहुंचाने से क्या लाभ, हमारे माता पिता हमें ग्रहण नहीं करेंगे, भाई बंधु नहीं ग्रहण करेंगे, हमें कोई ग्रहण नहीं करेगा, तो क्या चाहती हो, हम आपके घरों में झाड़ू लगाएंगे, बर्तन मलेंगे, सब काम करेंगे, आपकी दासियों की दासी होकर के रहना चाहती हैं, किंतु अब आपको छोड़ करके नहीं। कृष्ण ने कहा जब तुम्हारा दहेज कौन देगा, बिना दहेज की बात तक कैसे विवाह हो। कृष्ण बिना दहेज के, बिना किसी चीज के, अपने तरफ से कन्या के लिए तैयारी और अपने तरफ से पति की तैयारी जैसे होती है, दोनों घरों की तैयारी कृष्ण ने की, बिना पैसे का सब कुछ कर करके उनको विवाह किया और उनको राजभवन दिया। कोई पण की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, इसलिए कृष्ण को कोई पत्नी संग्रह करने के लिए या स्त्री संग प्रेयसी संग्रह करने के लिए पैसे की और रुपये की जरूरत नहीं है, उनका रूप ही ऐसा है, कपट है नापी रुचिरो सर्वासांग मनोहर, भीतर में कुटिलता ऊपर में बड़ी मनोहरता, बड़े मनोहर लगते हैं, बड़े सिर सिद्धे सर, नहीं तुमको विवाह करेंगे हम, कुछ भी तुम लोगों का नहीं है, बड़ी सरलता है। यदि वो विवाह नहीं करने का प्रस्ताव करती तो ये कृष्ण क्या करते, छोड़ देते, गोपियां नहीं छोड़ते, वो सभी उन्हीं के साथ में वो जैसे तैसे लेकर के जाते। उनका मनोहर रूप और कुटिल भू जिसको इस तरह से देख लेते हैं मन मुग्ध कर देते हैं। हमारा भी तो यही किया, हम इनकी पहले नहीं समझ सकी भ्रुकुटी और इनका ये सब चीजों को नहीं समझ सकी, इसलिए बिना मोल की ही बिक गई। क्या है दूसरा श्लोक, जयति ते अधिकं शरद उदास ए साधु जात सत सरसि जो उदर श्री मुषा दृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासी का, बिना शुल्क के ही दासी हो गई। कृष्ण से कहते हैं कि आपने कुछ शुल्क दिया जो प्रेम करने के लिए, हम आपकी बिना मोल की बिकी हुई नहीं है, हमने नहीं आपको बेचा, आप चाहते हैं हमारे साथ में, हम नहीं चाहती आपको, उल्टा कर रही हैं। इसलिए वो कर रही हैं, इनका हासी बंसी वादन सुंदर मुख ये जगत को आकर्षण कर लेता है। राष्ट्रपंचाध्याय में भी वर्णन किया गया है, जगत भर की स्त्रियों में ऐसा कौन है जो उनकी आरोह और अवरोह के सहित का स्त्री अंग ते कल्पदायत बेनवी सम्मोहिता अर्चरित चरित न चलित त्रैलोक्यम त्रैलोक सौभगम इदंच निरक्ष रूपम जद गो त्रुम द्विज मृगा उल्कान्न विप्र। इनको देख करके सभी लोग अपने धर्मों को छोड़ करके इनके अनुगत हो जाते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग हरिण यहाँ तक कि नदी यमुना पुरुषों की और स्त्रियों की तो बात क्या, सब मुक्त होकर के पेड़ जड़ है किंतु वो चलने वाले जैसे झुक जाते हैं। नदी चलने वाली वो स्थिर हो जाती है, जड़ हो जाती है। मेघ चलने वाला वो खड़ा हो जाता है, चंद्रमा खड़े हो जाते हैं। सभी लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं, आदमियों को देख करके हिरण भाग जाते हैं और वो प्रणय की भिक्षा कृष्ण से खड़े होकर के मांगते हैं। ऐसे हैं ये। तो कर रहे हैं जैसा भी हो, हम देवी नहीं हैं, हम लक्ष्मी नहीं हैं। जब भूल जाएंगे, लक्ष्मी जी भूल सकती हैं सीधी सादी, हम बहुत चतुर हैं, सयानी हैं, नहीं कहना चाहिए तो भी कर रही हैं अपने मुख दे, हम बड़ी सयानी हैं, हम उनकी बातों में अब नहीं पड़ेंगे, उनका कपट हास्य के द्वारा सभी लोग अपने को उनके चरणों में बेच देते हैं, अब हमारे लिए संभव नहीं है ऐसा। इस कपटता के द्वारा ही कृष्ण ने एक बार हमें पिलाया था अगर सुधार, और छोड़ देते हैं सदा के लिए, नई नई प्रियाओं को ग्रहण करते हैं। दिव्याद दूरे बर्तता भूति, तब वो भ्रमर कर रहा है, स्वामी जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे लक्ष्मी जी सब समय इनकी चरणों की पूजा क्यों करती हैं? लक्ष्मी नारायण श्यापी स्त्री चरण रज उपास्ते, तदंग संगार्थम इति नाग पत्नी वाक्यम वयं गोपी पौर्णमासी मुखात सुषमा। हम लोगों ने यह सुना है लक्ष्मी जी इनकी आराधना करने आई और नाग पत्नियां भी अपने को छाव इन पर कर दिया था, हमने पौर्णमासी जी से ये सब बातें सुनी हैं, अतः वयं का कश्यं गणनया, जब वही लोगों की ये दशा है तो हम लोगों की दशा क्या? हम तो साधारण एक ग्रामीण गांव की रहने वाली ग्वालिनी है, वनों में रहती हैं, वनचरी हैं। यह धन्यमय वाक्य इन बातों को सुन करके वो भ्रमर ऐसे ऐसे सिर हिलाता हुआ थोड़ा सा गुनगुन करने लगा, कहा जी ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसे प्रभु के ऊपर में ऐसा कठोर वाक्य कहना आप लोगों के लिए शोभा नहीं देता, इसलिए ऐसा ऐसा वो स्वाभाविक ही में ऐसा ऐसा करता है। देख करके उन्होंने कल्पना की, ओ ये ऐसा कर, नहीं नहीं स्वामी जी ऐसा मत कहिए। उसको देख करके उन्होंने फिर से ईर्ष्या पूर्वक कहना आरंभ किया, अरे लक्ष्मी जी सौभाग्य में और सौंदर्य में हमारे समान नहीं है, वो भूल जाएंगी हम नहीं भूलेंगे, भीतर में गूढ़ भाव ये है, इसलिए लक्ष्मा अधिक तो अपी प्रेमाधिक्यम रूप सावर्ण्य अधिकंच अनुव्यक्ति, इसलिए भीतर का गुण भाव क्या, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर में न्योछावे हम नहीं दाने जाते, हम लक्ष्मी से सुंदर हैं अधिक, रूपवती हैं, गुणवती हैं और अधिक विचार करने वाली हैं, लक्ष्मी जी को विचार शक्ति नहीं क्योंकि वो उल्लू पर बैठती हैं, संग के दोष से उनकी बुद्धि भी मारी जाती है, इसलिए वो भूल जाए हम ऐसा नहीं कर सकती, हम उल्लुओं का संग नहीं करते हैं, तुम सड़ंगरी आया तुम्हारा भी संग नहीं करेंगे, अर्ध पशु अपिच उत्तम श्लोक शब्द ही कृपण पक्ष एव संतप्त दीनहीन जनानंग जो दयते। अरे उत्तम श्लोक किसको कहते हैं? उत्तम श्लोक शब्द अर्थात जो कृपण है, दीनहीन है, उसके प्रति दयते, जिस पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, उनको कहते हैं उत्तम श्लोक। ये उत्तम श्लोक इसके लिए कैसे? इतना निष्ठुर ये उत्तम श्लोक वाच्य नहीं है, लक्ष्मी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि नहीं जानती है कि तो हम तो जानती है ना, कृष्ण तू तल लक्षण अभ्यान अच्छा ये बतलाओ हमसे दुखी कौन होगा? गोपियां कर रही है परमर्श, तू बतला तो, आज बन बन जो हम फिर घूम रही हैं, घर बार सी से हम लोग हीन है, किसके लिए? इसी के लिए, तो कहां इसको दया है? समझ नहीं सकता, इसलिए उत्तम श्लोक नहीं है, आक्षेप लगा रही है। पूर्वार्ध में पहले टीवी भूवी इत्यादि के द्वारा कृष्ण पर कुहक माने ठग होने का लंछना लगाया, दीभू माने जितनी भी स्त्रियां हैं सबको ठगते हैं, इसलिए ये उन पर एक लगाया दोष। गर्भ में गर्विता ईर्ष्या है कृष्ण के प्रति, और चतुर्थ पाद में आक्षेप कर रही हैं कृष्ण पर, जिसमें कुहक माने वंचना करने की भावना हो और गर्भ गर्भित ईर्ष्या हो, गर्भ के साथ में भीतर भीतर में ईर्ष्या हो, असूया करने वाले द्वेष ईर्ष्या करने वाली हो, ऐसे वचनों के द्वारा जो व्यक्त करती हैं अपनी भावों को, उस भाव को उज्जल्प कहते हैं। यहां पर उज्जल्प की बात बतलाई गई, प्रेम गर्भ ये सब चीजें हैं। उद्धव के भी समझ में नहीं आने वाली है, नारद जी के लिए भी नहीं, इसलिए उद्धव जी समझ सुन रहे हैं। ऐसा कभी जीवन में नहीं देखा, ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं आया, धीर होकर के सुन रहे हैं, और ये जो भ्रमर कर रहा है माने उद्धव कर रहे हैं, इसको ऐसे रूप में समझा जाए, उद्धव की भावना ऐसे हो रही है, और उनके प्रत्येक बातों का उत्तर भी ये गोपियां देते हुए समाधान करती चली जा रही है। आज यही तक रहे। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च प्रणीता। कल आप लोग कथा सुनिए, हरिनाम कीजिए, और परसों है पूर्णिमा।